ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।
पंचतंत्र।
नमस्कार, मेरा नाम है ऋचा और आप सुन रहे हैं ऑडियो पिटारा और मैं लेके आई हूँ विष्णु शर्मा की लिखी संपूर्ण पंचतंत्र की कहानियाँ। इस कहानी का नाम है वज्रदंश सिंह और चतुरक्षयार। किसी जंगल में वज्रदंश नाम का सिंह रहता था। चतुरक नाम का सियार और क्रव्यमुख नाम का भेड़िया आज्ञाकारी सेवक की तरह हमेशा उसके साथ रहते थे। एक दिन सिंह ने घने जंगल में प्रसव वेदना से पीड़ित एवं अपने दल से पिछड़ी एक ऊंटनी बैठी देखी। उसको मारकर जब सिंह ने उसका पेट फाड़ा तो उसमें से छोटा सा ऊंटनी का जिंदा बच्चा निकला। उस ऊंटनी के मांस से परिवार सहित सिंह को परम तृप्ति प्राप्त हुई, परंतु स्नेह के कारण ऊंटनी के बच्चे को घर में लाकर उससे बोला, भद्र, तुम्हें मृत्यु का डर नहीं है, न मुझसे न दूसरे किसी से, इसलिए तुम स्वेच्छा पूर्वक जंगल में घूमो। शंकु के समान तुम्हारे कान हैं, इसलिए तुम्हारा नाम शंकुकर्ण होगा। ऐसा करके विचारों घूमते और आपस में अनेक प्रकार की बातों के सुख का अनुभव करते हुए रहते थे। धीरे धीरे शंकुकर्ण जवान हो गया। अब वो सिंह को एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ता था। एक दिन वज्रदंश का जंगल में रहने वाले किसी हाथी के साथ युद्ध हुआ। उसके पराक्रम तथा दांतों के प्रहारों से वो इतना घायल हो गया कि एक कदम भी नहीं चल पा रहा था। भूख से व्याकुल होकर वो बोला, कोई जीव ढूंढो जिससे मैं इस हालत में होते हुए भी उसे मारकर अपनी और तुम्हारी भूख शांत कर सकूं। ये सुनकर वे तीनों जंगल में शाम तक घूमते रहे, परंतु कोई जीव न मिला। तब चतुरक ने सोचा, यदि शंकुकर्ण मारा जाए तो हम सबकी कुछ दिनों के लिए तृप्ति हो जाए, परंतु मित्र तथा आश्रित होने के कारण हमारा स्वामी इसको मारेगा नहीं। फिर भी मैं अपनी बुद्धि के प्रभाव से स्वामी को समझाकर ऐसा करूंगा जिससे वो उससे मार डाले। कहा भी है, संसार में बुद्धिमानों की बुद्धि से हर प्राणी को मारा जा सकता है, हर स्थान पर पहुंचा जा सकता है और ऐसा कोई काम नहीं जो किया न जा सकता हो, इसलिए अपनी बुद्धि को काम में लगाना ही चाहिए। ये सोचकर वो शंकुकर्ण से बोला, शंकुकर्ण, हमारे स्वामी भोजन न मिलने के कारण भूख से पीड़ित हैं। स्वामी के मर जाने से भूख से हम भी मर जाएंगे, इसलिए मैं जो कुछ स्वामी के लिए कह रहा हूँ वो सुनो। शंकुकर्ण बोला, जल्दी बोलो जिससे मैं तुम्हारे बात को बिना सोचे समझे पूरा करूँ, क्योंकि स्वामी का हित करने में सैकड़ों उपकार होंगे। चतुरक बोला, भद्र, अगर तुम अपना शरीर स्वामी को दे दो तो तुम्हारा शरीर दुगना हो जाएगा और स्वामी की जान भी बच जाएगी। ये सुनकर शंकुकर्ण बोला, भद्र, यदि ऐसा है तो ये कहो कि मेरा उद्देश्य सफल हुआ, तुम स्वामी का कार्य संपन्न करो, परंतु इसमें धर्म ही साक्षी है। इस प्रकार विचार करके वे सिंह के पास गए। वहां चतुरक बोला, देव, हमें कोई जीव नहीं मिला, शाम भी हो गई, इसलिए यदि स्वामी दुगना शरीर प्रदान कर सकें तो शंकुकर्ण दुगना शरीर करने की शर्त पर धर्म को साक्षी मान के अपना शरीर आपको दे देगा। सिंह बोला, यदि ऐसा है तो बहुत अच्छा है, ये व्यवहार का काम है, इसमें धर्म को साक्षी मानो। सिंह के ऐसा कहने पर भेड़िया तथा सियार ने उसका पेट फाड़ डाला जिससे शंकुकर्ण मर गया। तब वज्रदंश चतुरक से बोला, मैं नदी के तट पर स्नान देवता की पूजा करके आता हूँ, तब तक तुम यहाँ सावधानी के साथ रहना। ऐसा कहकर वो नदी की ओर चला गया। उसके जाने पर चतुरक ने सोचा, कैसे मुझ अकेले को ही ये ऊँट खाने को मिल जाए। ये सोचकर वो क्रव्यमुख से बोला, क्रव्यमुख, तुम भूखे हो, इसलिए जब तक स्वामी न आए तब तक तुम ही इस ऊँट के मांस को खाओ, मैं तुमको स्वामी के सामने निर्दोष सिद्ध कर दूंगा। ये बात सुनकर जैसे ही उसने जब कुछ मांस खाया तभी चतुरक बोला, क्रव्यमुख, स्वामी आ रहे हैं, तुम इसे छोड़कर दूर हो जाओ जिससे उन्हें संदेह न हो। सिंह ने जब आकर ऊँट को देखा तो उसका कलेजा गायब था। तब टेढ़ी भौं करके क्रोध पूर्वक बोला, बताओ ये ऊँट किसने जूठा कर दिया, मैं उसको भी मार दूंगा। सिंह के ऐसा कहने पर क्रव्यमुख चतुरक का मुंह देखने लगा। तब चतुरक ने हंसकर कहा, मेरा अनादर करके और मांस खाकर अब मेरा मुंह देख रहे हो, इसलिए तुम उस दुर्नीति पेड़ का फल चखो। ये सुनकर क्रव्यमुख मरने के डर से दूर भाग गया। उसी समय ऊंट का एक दल बोझ से लदा हुआ वहां से निकला। उस दल के आगे वाले ऊंट के गले में एक बड़ा सा घंटा बंधा हुआ था। उसकी आवाज को दूर से ही सुनकर सिंह सियार से बोला, भद्र, देखो तो ये किसकी आवाज सुनाई दे रही है, जैसी पहले कभी नहीं सुनी थी। ये सुनकर चतुरक कुछ दूर जंगल में गया और शीघ्रता से आकर बोला, स्वामी जाओ, यदि आप भागने में समर्थ हो तो भाग जाओ। वो बोला, भद्र, तुम क्यों मुझे डरा रहे हो, कहो क्या बात है। चतुरक बोला, स्वामी धर्मराज इसीलिए आप पे गुस्सा हैं क्योंकि आपने बिना कारण उनका ऊंट नष्ट किया है, इसलिए उस ऊंट का 1000 गुना आपसे वसूल करने के लिए आगे वाले ऊंट के गले में खूब बड़ा सा घंटा बांधकर ऊंट में मन लगाए तथा उसके पितामह आदि को साथ लिए बदला लेने आ रहे हैं। सिंह ने ये बात सुनी और दूर से ऊँटों का काफिला भी देखा तो प्राणों के डर से वो मरे ऊँट को वहीं छोड़कर भाग गया। उसके बाद चतुरक ने धीरे धीरे मजे से ऊँट का मांस खाया। इसलिए मैं कहता हूँ, औरों को सताकर इत्यादि। दमनक के चले जाने पर संजीवक सोचने लगा, अहो ये मैंने क्या किया जो मैं घास खाने वाला होता हुआ भी इस मांस भक्षी का आज्ञाकारी बना रहा। अथवा ये सच ही कहा है, जो पुरुष अगम्यों के साथ गमन करता और असेव्यों की सेवा करता है वो उसी प्रकार मृत्यु को प्राप्त होता है जैसे खच्चरी गर्भ धारण करके मर जाती है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, किस प्रकार मुझे शांति मिले? अच्छा न हो तो उस पिंगलक के पास जाऊं, हो सकता है वो मुझ शरणागत को ना मारे। कहा भी है, इस लोक में धर्मार्थ के लिए कोशिश करने पर यदि दैव योग से कोई परेशानी आ पड़े तो उसकी शांति के लिए बुद्धिमानों को विशेष नीति अपनानी ही चाहिए, क्योंकि संसार में ये बात प्रसिद्ध है कि जले हुए स्थान पर आग का सेक ही फायदेमंद होता है। इस संसार में शरीरधारियों को अच्छी तरह किए हुए अपने कर्म का फल मिलता ही है। शुभ अशुभ भाव से जो अर्जित किया है वो मिलेगा और जो होना है वो होगा ही। इसमें कुछ ही विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और फिर दूसरी जगह में जाकर भी किसी मांस भक्षी तथा दुष्ट जीव के द्वारा मेरी मृत्यु हो सकती है, उससे तो सिंह के द्वारा मरना ही अच्छा है। कहा भी है, महापुरुषों से स्पर्धा करने पर प्राप्त परेशानी भी अच्छी होती है। पर्वत को ढहाने में हाथियों के दांत का टूटना भी श्रेयस्कर होता है और नीच प्राणी भी बड़ों द्वारा क्षय को प्राप्त होकर आदरणीय हो जाता है। जैसे मधु का इच्छुक भौरा हाथी के कान से ताड़ित होकर भी सराहनीय होता है। ऐसा निश्चय करके लड़खड़ाता हुआ संजीवक धीरे धीरे जाकर सिंह का आश्रम देखता हुआ ये कहने लगा, अहो सत्य ही कहा है, जिसके अंदर सांप बैठा हो ऐसे घर के समान, हिंसक जीवों से भरे जंगल के समान, नाकों से युक्त और मनोहर छाया वाले कमल खिले तालाब के समान, अनेक दुष्ट लोगों तथा झूठी बातों में मग्न एवं धृष्टता से पूर्ण राजाओं का घर समुद्र के समान होता है। भयभीत और श्रेष्ठ पुरुष बहुत दुख से वहाँ जाते हैं। इस प्रकार श्लोक पढ़ता हुआ वो दमनक की बताई हालत के सामने पिंगलक की हालत को देखकर आश्चर्य से बिना प्रणाम किए दूर बैठ गया। पिंगलक भी उसको इस प्रकार देख तथा दमनक की बात को सच मानकर गुस्से से उसके ऊपर टूट पड़ा। इस प्रकार सिंह के पैने नाखूनों से घायल संजीवक ने सींगों से पिंगलक के पेट में प्रहार कर दिया और किसी प्रकार उससे अलग हुआ। वो दोबारा सींगों से मारने की इच्छा करके युद्ध के लिए खड़ा हो गया। गुस्से से लाल होकर दोनों एक दूसरे को मारने की इच्छा से खड़े देखकर करकट दमनक से बोला, इन दोनों में विरोध करा के तुमने अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुम नीति का तत्व नहीं जानते। जानने वालों ने ठीक ही कहा है, अगर काम उत्तम दंड से मुक्त, साहस से भरे और कष्ट से सफल होने वाले होते तो नीति कुशल मंत्री प्रीति और साम नीति से ही काम चला लेते हैं, परंतु जो अन्याय तथा युद्ध करके बहुत कम फल की इच्छा करते हैं उन दुर्नीति अपनाने वाले राजाओं की लक्ष्मी संदेह के पद पर पहुंच जाती है। इसलिए यदि कहीं स्वामी का नाश हो गया तो तुम्हारी मंत्र बुद्धि से क्या लाभ, और संजीवक नहीं मरा तो भी अशुभ होगा, क्योंकि प्राण को खतरे में डालकर उसको मार डालना है। ओ मूर्ख, तुम किस प्रकार मंत्री पद की इच्छा कर रहे हो? तुम तो साम सिद्धि भी नहीं जानते। दंड में रुचि होने के कारण तुम्हारी ये इच्छा पूरी नहीं होगी। कहा भी है, ब्रह्मा ने साम से लेकर दंड तक नीतियां कही हैं। उन नीतियों में दंड पापिनी नीति है, उसको सबसे बाद में काम में लाना चाहिए। और जहाँ साम नीति से ही सफलता मिलती हो वहाँ चतुर पुरुष को दंड नीति प्रयोग नहीं करनी चाहिए। यदि शक्कर से ही पित्त शांत हो जाए तो परवल देने की क्या आवश्यकता। और विद्वान पुरुषों को पहले साम नीति का प्रयोग ही करना चाहिए। साम नीति से सफल हुए कार्य में कभी विकार नहीं होते। चंद्रमा, औषधि, सूर्य तथा आग के द्वारा विद्वेष से उत्पन्न अंधकार दूर नहीं होता, विद्वेष यानी शत्रुता, किंतु वो साम नीति से ही दूर होता है। और तुम जो मंत्री पद की इच्छा कर रहे हो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि तुम मंत्रणा की गति को नहीं जानते। मंत्र 5 प्रकार का होता है, कार्य के आरंभ का उपाय करना, कर्मचारियों के लिए द्रव्य संपत्ति, देश काल का उचित विभाग, अपाय या नाश को रोकने का उपाय और कार्य की सफलता। अब पिंगलक और संजीवक दोनों स्वामी नौकर में से एक या दोनों की मृत्यु निश्चित है, इसलिए यदि कोई शक्ति हो तो इस अनिष्ट विनाश को रोकने की कोशिश करो। शत्रुओं में मिलाप कराने में ही मंत्रियों की बुद्धि की परीक्षा होती है। इसलिए अरे मूर्ख, ये करने में तुम असमर्थ हो क्योंकि तुम्हारी विपरीत बुद्धि चल रही है। कहा भी है, बिछड़े हुओं को मिलाने में मंत्रियों की और सन्निपात रोग में वैद्यों की बुद्धि देखी जाती है। वैसे स्वस्थ दशा में कौन पंडित नहीं होता, और भी नीच दूसरों का कार्य नष्ट करना ही जानता है, सफल करना नहीं जानता। चूहे में अन्न का बर्तन गिरा देने की ही शक्ति होती है, उठा कर रखने की नहीं। अथवा ये तुम्हारा नहीं, स्वामी का दोष है जिसने तुम्हारी बात पर विश्वास किया। कहा भी है, नीच लोगों से सेवा कराने वाले राजा पंडितों के बताए रास्ते पर नहीं चलते, इस कारण वे निकलने के मार्ग से रहित तथा सारी बाधाओं से भरे अनर्थ के समूह रूपी दुर्गम मार्ग पर चलते हैं। गुणों का पश्चात भी जो राजा बुरे मंत्रियों से घिरा हो उसके पास कोई नहीं जाता। जैसे निर्मल तथा स्वादिष्ट जल वाला तालाब दुष्ट मगर से युक्त होने के कारण उसके पास भी कोई नहीं जाता, और फिर शिष्ट लोगों से रहित स्वामी का भी नाश ही हो जाता है। कहा भी है, जो राजा लोक चित्र विचित्र बातों का आनंद लेते हुए धनुष चढ़ाकर नौकरों के साथ घूमते फिरते हैं और राजकाज नहीं करते, शत्रु उनकी लक्ष्मी के साथ रमण करते हैं। इसलिए मूर्ख को उपदेश देने से क्या लाभ, उसमें केवल दोष ही है, गुण नहीं। कहा भी है, नहीं झुकने योग्य लकड़ी नहीं झुकती, पत्थर से हजामत बनाने का काम नहीं होता, और अशिष्य को उपदेश नहीं दिया जा सकता। सूची मुख इसका उदाहरण है। दमनक बोला, वो कैसे? करकट बोला, यानी अगली कहानी का समय। मूर्ख बंदर और सूची मुख पक्षी।
पंचतंत्र।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।